अध्याय 9 मोती। यह अध्याय मत्ती 13 आयत 45-46 पर आधारित है। हमारे उद्धारकर्ता को बहुमूल्य मोती की तुलना में प्रेम को छुड़ाने का आशीर्वाद। उन्हें व्यापारी के दृष्टांत अपने पाठ की व्याख्या ईश्वरीय मोती की मांग करते हुए कि जब उन्हें बड़ी कीमत का एक धन मिला तब जाकर उसने सब कुछ बेच दिया जो उसके पास था और उसे खरीद लिया। यीशु खुद महान मूल्य के वो मोती है। उसी में परमेश्वर की पूर्णता को इकट्ठा किया जाता है। वह पिता की महिमा और उनके व्यक्ति की व्यक्तित्व छवि चमक है। उनके चरित्र में ईश्वर की विशेषता को व्यक्त किया गया है। पवित्र शास्त्र का हर पन्ना उसकी रोशनी से चमकता है। मसीह की धार्मिकता एक शुद्ध सफेद मोती के रूप में कोई दोष नहीं है। मनुष्य का कोई भी कार्य परमेश्वर के अनमोल उपहार को बेहतर नहीं बना सकता है। यह दोष के बिना है। मसीह में ज्ञान और ज्ञान के सभी खजाने को छिपाया गया है। कुलुसियों 2:3। वो हमारे लिए ज्ञान और धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारे के लिए बनाया गया है। 1 कुरिन्थियों 1:30। वो सब जो इस दुनिया के लिए और दुनिया में आने के लिए मानव आत्मा की जरूरतों और लालसाओं को पूरा कर सकता है और मसीह में पाया जाता है, जो हमारा उद्धारक मोती है। इतना कीमती कि उसकी तुलना में सभी चीजों का नुकसान हो सकता है। मसीह अपनों ही के पास आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यूहन्ना 1:11। ईश्वर का प्रकाश दुनिया के अंधेरे में चमक गया और अंधेरा समझ में नहीं आया। यूहन्ना 1:5। लेकिन सभी को स्वर्ग के उपकार के प्रति उदासीन नहीं पाया गया। दृष्टांत में व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो ईमानदारी से सत्य की इच्छा रखते थे, अलग अलग देशों में बनाया और विचारशील पुरुष थे, जिन्होंने साहित्य और विज्ञान और धर्म की दुनिया के लिए धर्म की मांग की थी, जिसे वे आत्मा के खजाने के रूप में प्राप्त कर सकते थे। यहूदियों के बीच वो लोग थे जो उसके लिए मांग कर रहे थे, जो उन्होंने नहीं किया है। एक औपचारिक धर्म से असंतुष्ट, वे उसके लिए तरस गए जो आध्यात्मिक और उत्थान था। मसीह के चुने हुए चेले बात के वर्ग कॉर्नेलियस और इथियोपिया के पूर्वजों के थे। वे स्वर्ग से प्रकाश की लालसा और प्रार्थना कर रहे थे, और जब मसीह उनके सामने आया तो उन्होंने उसे प्रसन्नता से स्वीकार किया। दृष्टांत में मोती को उपहार के रूप में नहीं दर्शाया गया है। व्यापारी ने उस सभी को कीमत पर इसे खरीदा। कई लोग इसके अर्थ पर प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में मसीह को एक उपहार के रूप में दर्शाया गया है। वह एक उपहार है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो खुद के बिना शरीर और आत्मा को आरक्षित किए देते हैं। हम खुद को मसीह के लिए देने के लिए उनकी सभी आवश्यकताओं के लिए आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए कर रहे हैं। हम जो कुछ भी है, वे सभी प्रतिभाएं और क्षमताएं जो हमारे पास हैं, वे प्रभु की हैं। उनकी सेवा के लिए पवित्र होना है। जब हम अपने आप को स्वर्ग के सभी खजाने के साथ मसीह के लिए पूरी तरह से देते हैं, तो हमें खुद को देते हैं। हम महान मूल्य के मोती प्राप्त करते हैं। उद्धार एक मुफ्त उपहार है, और फिर भी इसे बेचा और खरीदा जाता है। जिस बाजार में दैवीय दया का प्रबंधन होता है, वहां कीमती पैसों को बिना पैसे और बिना कीमत के खरीदा जा रहा है। इस बाजार में सभी स्वर्ग का सामान प्राप्त कर सकते हैं। सत्य के रत्नों का खजाना सभी के लिए खुला है। देखो, मैंने तुम्हें एक खुले दरवाजे के सामने स्थापित किया है, प्रभु घोषणा करता है, और कोई भी आदमी इसे बंद नहीं कर सकता है। इस दरवाजे से कोई लगातार रास्ता नहीं बनाती है। दरवाजे पर भीतर से आवाजें आती है, कहते हैं। मुक्तिदाता की आवाज हमें प्यार से और प्यार से बुलाती है। मैं तुम्हें आग में ताया हुआ सोना खरीदने की सलाह देता हूं कि तुम सबसे अमीर हो। प्रकाशित वाक्य 3:18-18।
मसीह का सुसमाचार एक आशीर्वाद है जो सभी के पास हो सकता है। उद्धार प्राप्त करने के लिए सबसे गरीब भी सबसे अमीर है। सांसारिक धन की कोई भी राशि इसे सुरक्षित नहीं कर सकती है। ये प्यार आज्ञाकारिता द्वारा प्राप्त जाता है, जो खुद को खरीदे गए कब्जे के रूप में यीशु को क्रूस पर चढ़ता है। शिक्षा, यहां तक कि उच्चतम वर्ग के खुद को ईश्वर के पास नहीं ला सकता है। फरीसी हर लौकिक और हर आध्यात्मिक लाभ के पक्षधर थे और उन्होंने घमंड भरे गर्व के साथ कहा, हम धनवान हैं और माल के साथ बड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं। अभी तक वे मनहूस और दुखी और गरीब और अंधे और नग्न थे। प्रकाशित वाक्य 3:17। सब ने उन्हें बड़े कीमत के मोती की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया और उन्होंने उनसे कहा, सार्वजनिक और शरणदाता आपके साथ परमेश्वर के राज्य में जाते हैं। मत्ती 21:31। हम उद्धार अर्जित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए बहुत रुचि और दृढ़ता के साथ तलाश कर रहे हैं, जैसे कि हम इसके लिए दुनिया में सब कुछ छोड़ देंगे। हम बड़ी कीमत के मोती की तलाश में हैं, लेकिन सांसारिक बाजारों का सांसारिक तरीकों नहीं है। हमें जो कीमत चुकानी पड़ती है वो सोने या चांदी की नहीं। इसके लिए ईश्वर को हमें स्वयं को समर्पित करना है। इस विचार का त्याग करें कि लौकिक या आध्यात्मिक लाभ आपको उद्धार के लिए जिताएगा। ईश्वर आपकी मर्जी का पालन करने के लिए कहते हैं, जो विजयी होगा, मसीह घोषणा करता है, उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का गौरव प्रदान करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे मैं विजयी बनकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। प्रकाशित वाक्य 3:21। कुछ ऐसे हैं जो हमेशा स्वर्गीय मोती की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे अपनी गलत आदतों का संपूर्ण समर्पण नहीं करते हैं। वे स्वयं नहीं चाहते हैं कि मसीह उनमें जीवित रहें, इसलिए उन्हें कीमती मोती नहीं मिलते। उन्होंने अपवित्र महत्वाकांक्षा और सांसारिक आकर्षण के लिए अपने प्यार को दूर नहीं किया है। वे क्रूस को नहीं लेते हैं और आत्मत्याग और बलिदान के मार्ग में मसीह का अनुसरण करते हैं। लगभग मसीही अभी तक पूरी तरह से मसीही नहीं हैं। वे स्वर्ग के पास लगते हैं, लेकिन वे वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लगभग पूरी तरह से नहीं, बल्कि पूरी तरह से बचा हुआ, मतलब लगभग पूरी तरह से नहीं बल्कि पूरी से खो गया। अच्छे मोती की मांग करने वाले व्यापारी के दृष्टांत में दोहरा महत्व है। ये न केवल पुरुषों के लिए स्वर्ग के राज्य की मांग के रूप में लागू होता है, बल्कि मसीह के रूप में उनकी खोई विरासत की मांग करता है। मसीह, जो स्वर्गीय व्यापारी अच्छा मोती चाहता था, उसने खोई हुई मानवता को मोतियों की माता में देखा। मनुष्य में पाप के द्वारा अपवित्र और बर्बाद, उसने उद्धार की संभावनाओं को देखा। वे शब्द जो शैतान के साथ संघर्ष के युद्ध के मैदान में हैं और जिन्हें प्रेम की शक्ति द्वारा बचाया गया है, वे मुक्तिदाता की तुलना में अधिक कीमती हैं, जो कभी नहीं गिरे। ईश्वर ने मानवता को देखा, न कि नीच और बेकार। उसने यीशु में से देखा, इसे प्रेम को भुनाने के माध्यम से देखा। उन्होंने ब्रह्मांड के सभी धन एकत्र किए और उन्हें मोती खरीदने के लिए नीचे रखा, और यीशु ने इसे पाया, इसे अपने स्वयं के शिक्षा शास्त्र में रखा। क्योंकि वे एक मुकुट को पत्थर के रूप में हो गए, उनकी भूमि पर एक प्रतीक के रूप में उठा लिया जाएगा। ज़करिया 9:16। वे मेरे होंगे, मेजबानों के प्रभु, उस दिन जब मैं अपने गहने बनाऊंगा। मलाकी 3:17। लेकिन अनमोल मोती के रूप में मसीह, इस स्वर्गीय खजाने को रखने का हमारा विशेषाधिकार, ये विषय है जिस पर हमें सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये पवित्र आत्मा है जो पुरुषों को मोती की अनमोलता को प्रकट करती हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति का समय है, वो समय है जब एक विशेष अर्थ में स्वर्गीय उपहार की मांग की जाती है और मसीह में पाया जाता है। मसीह के दिनों में कई लोगों ने सुसमाचार सुना, लेकिन झूठी शिक्षाओं से उनके दिमाग का रंग गहरा हो गया और उन्होंने गलील के परमेश्वर के भेजे हुए शिक्षक में विश्वास नहीं किया। मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उनके मध्यस्थ राज्य में उनके प्रवेश को पवित्र आत्मा के प्रकोप द्वारा इंगित किया गया था। पेंतिकुस्त के दिन आत्मा को दिया गया था, मसीह के गवाहों ने उठे उद्धारकर्ता की शक्ति की घोषणा की। स्वर्ग के प्रकाश ने उन लोगों के अंधेरे दिमाग में प्रवेश किया जो मसीह के दुश्मनों द्वारा धोखा दिया गया था। उन्होंने अब इज़राइल के प्रति पश्चाताप और पापों को क्षमा करने के लिए एक राजकुमार और उद्धारकर्ता होने का श्रेय दिया। प्रेरितों 5:31। उन्होंने देखा कि स्वर्ग की महिमा के साथ उनके हाथों में अनंत खजाने हैं जो उनके विद्रोह से बदल जाएंगे। जैसे ही प्रेरितों पिता की एकमात्र भिक्षा की महिमा को निर्धारित किया, 3,000 आत्माओं को दोषी ठहराया गया। वे खुद को देखने के लिए बने थे क्योंकि वे पापी और प्रदूषित थे, और मसीह उसके दोस्त और उद्धारक के रूप में। मसीह को उठा लिया गया, मसीह की महिमा दी गई जो पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पुरुषों पर टिकी हुई थी। विश्वास से इन विश्वासियों ने उन्हें अपमान, पीड़ा और मृत्यु के रूप में देखा था, जो शायद नष्ट नहीं होते लेकिन जीवन को नष्ट कर सकते हैं। आत्मा द्वारा मसीह के रहस्योद्घाटन ने उन्हें उनकी शक्ति और महिमा का एहसास कराया, और उन्होंने विश्वास करते हुए कहा, मुझे विश्वास है।
फिर मसीह के जी उठने की खुशी के सुसमाचार को दुनिया भर में बसे हुए सीमाओं तक ले जाया गया। कलीसिया के सभी दिशाओं से झुंड को धर्मांतरित किया जाता है। भक्तों का पूर्व पूर्ण निर्माण किया गया। पापी बड़ी कीमत के मोती मांगने में मसीही के साथ एकजुट हो गए। भविष्यवाणी पूरी हो गई। कमजोर दाऊद के रूप में और दाऊद का घर प्रभु के दूत के रूप में होगा। ज़करिया 12:8। प्रत्येक मसीही ने अपने भाई में परोपकार और प्रेम के दिव्य अनुकरण को देखा। एक रुचि प्रबल हुई। एक वस्तु अन्य सभी को मात्र महत्वाकांक्षा मसीह के चरित्र की समानता को प्रकट करना था और उसके राज्य के विस्तार के लिए श्रम करना था। उन लोगों की भीड़ जो मानती थीं कि वे एक हृदय और एक आत्मा के थे। महान शक्ति के साथ प्रेरितों ने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की साक्षी दी उन सभी को बड़ी थी। प्रेरितों के काम 4:32-33। और प्रभु की कलीसिया में प्रतिदिन जोड़ा गया जिन्हें बचाया जाता था। प्रेरितों के काम 2:4। मसीह की भावना पूरी मंडली को अनुप्राणित करती है क्योंकि उन्हें बहुमूल्य मोती मिला था।
इन दृश्यों को दोहराया जाना है और अधिक शक्ति के साथ। पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का प्रकोप पूर्व की वर्षा थी, लेकिन बाद की बारिश अधिक प्रचुर होगी। आत्मा हमारी मांग और स्वागत का इंतजार करती है। पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा मसीह की पूर्णता फिर से प्रकट किया जाना है। पुरुष अनमोल मोती के मूल्य को समझेंगे, और प्रेरित पौलुस के साथ वे कहेंगे, मुझे किन चीजों से लाभ हुआ जिन्हें मैंने मसीह के लिए नुकसान। यीशु मसीह मेरे प्रभु। फिलिप्पियों 3:7-8।